ये आकाशवाणी है। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि फार्म फाइबर फैब्रिक फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और यह भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत टेक्स अब मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है।
भारत टेक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। भारत टेक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत आज छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टेक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में जनजातीय लोगों की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में आदिवासी कल्याण के लिए आवंटन राशि 3 गुना बढ़ाई गई है।
पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है।
इस महोत्सव में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, शिल्पकार और 500 कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 आदिवासी खाद्य स्टॉलों को भी लगाया गया है, जो 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परंपरागत विविधताओं को प्रदर्शित करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जाँच शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस भी भगदड़ से पहले एक घटनाक्रम का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है। उत्तर रेलवे ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए तथा मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में मारे गए राज्य के लोगों के निकट संबंधियों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घटना पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने शोक व्यक्त किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मैक्रो रूबियो यूक्रेन में युद्ध समाप्त कराने के लिए सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इससे इस मामले में यूरोप को दरकिनार करने की आशंका हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीमर स्टारमर समेत यूरोप के नेताओं के साथ कल पेरिस में आपात बैठक बुलाई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत के बाद रूस और अमरीका की बैठक हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। नवनीत कौर और रुतिजा ने भारत की ओर से 2 गोल किए। शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्पेन से होगा। बड़ोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के तीसरे मैच में आज शाम 7:30 बजे से गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।